हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। सच में चला जाऊँ? अर्णव ने उसकी आंखों में झांकते हुए संजीदगी से सवाल किया। अगले ही पल ध्रुति ने ढीठता से जवाब दिया, हाँ चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। वहाँ से यूं चली क्यों आई और क्यों अपने कैबिन को तहस नहस किया हुआ है? इतना गुस्सा किस बात का है? अर्णव का सवाल सुनकर ध्रुति का मन एक बार फिर सुलग उठा। आंखों के सामने वो दृश्य उभरा और चेहरे पर कड़वाहट बिखर गई। मुझे किसी के रोमांस में खलल डालना बिल्कुल नहीं पसंद और न ही दो लवर्स के बीच कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक है, इसलिए चली आई वहाँ से। और ये मेरा कैबिन है, यहाँ मैं कुछ भी करूँ, आपको कोई हक नहीं मुझसे सवाल जवाब करने का। मतलब तुम्हें मुझे किसी और के साथ देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा? अर्णव ने भौं उछालते हुए सवाल किया और गहरी निगाहों से उसे देखने लगा। ध्रुति ने तुरंत ही गुस्से से जबड़े भींचते हुए छोटा सा जवाब उसके सामने रख दिया, नहीं, जेलसी नहीं हुई तुम्हें, नहीं, प्यार नहीं तुम्हें मुझसे। अर्णव के इस सवाल पर ध्रुति पल भर को ठहरी, फिर निगाहें फेरते हुए बोली, नहीं। अर्णव पल भर को उसे तकता रहा, फिर कुछ सोचते हुए गंभीरता से बोला, ठीक है फिर, जब तुम्हें प्यार ही नहीं मुझसे, फिर तो मेरे होने न होने से भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, नहीं पड़ता मुझे आपसे कोई फर्क, ध्रुति ने तुनकते हुए जवाब दिया। अच्छी बात है, ये कुछ ही दिनों में साबित हो जाएगा कि तुम्हें मुझसे फर्क पड़ता है या नहीं। अर्णव की सुनकर ध्रुति उलझन में पड़ गई। क्या मतलब? उसका ये सवाल सुनकर अर्णव ने बेबसी और दर्द भरी मुस्कान लबों पर सजाते हुए जवाब दिया, मतलब ये मेरी जान, इतने सालों से मैं तुम्हारी दी सज़ा खामोशी से काट रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो ये सज़ा खत्म होगी, कभी तो मुझे तुम्हारी माफ़ी मिलेगी, कभी तो मुझे मेरी जान, मेरी ज़िंदगी की रूठी खुशियाँ वापस मिलेगी। पर अब जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं, तो इंतज़ार करने का तो मतलब ही नहीं बनता, और जिस ज़िंदगी में तुम नहीं शामिल हो सकती, उसे बोझ बनाकर ढोने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। इसलिए अभी तो मुझे अपनी कुछ अधूरी जिम्मेदारियां निभानी है, पर बहुत जल्द मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा जिसने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द दिया है। उसकी आंखों में एक जुनून था, शब्दों में सच्चे जज्बे झलक रहे थे, उसके इरादे मजबूत थे और अपनी बात से पलटना उसका स्वभाव नहीं था। वो फैसला ले चुका था और ध्रुति सुन्न सी खड़ी रह गई थी। अर्णव ने पल भर उसे देखा, फिर कैबिन से बाहर निकल गया और पीछे छोड़ गया ध्रुति के मन में एक बेचैनी, एक डर और कुछ अनकहे से एहसास। ध्रुति उस इंसिडेंट के बाद घर लौट आई थी। कोशिश तो पूरी कर रही थी कि अर्णव की बातों पर ध्यान न दे, पर बेचैन दिल बार बार उसी दिशा में जा रहा था। खुद को खूब समझाया था कि अर्णव ने बस उसे डराने के लिए ऐसा किया है, सच में ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, पर दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मन बहलाने की लाख कोशिशों के बावजूद दिल कहीं लग ही नहीं रहा था। एक तरफ ध्रुति बेचैन थी और दूसरी तरफ अर्णव आज खुद को हारा हुआ सा महसूस कर रहा था। ध्रुति का गुस्सा देखकर उसे लगा था कि उम्मीद अब भी बाकी है, पर अब आखिरी उम्मीद भी टूटती हुई सी नजर आ रही थी। ध्रुति लंच टाइम घर से निकलकर मृणाल के ऑफिस पहुंच गई। खाली घर में दिल अजीब सा हो रहा था, इसलिए कुश से मिलने गई थी। उसने माधुरी के कैबिन का डोर खोला ही था कि माधुरी की आवाज़ उसके कानों से टकराई और उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। कबीर, कुश ध्रुति का बेटा नहीं है, वो तो उसने झूठ कहा था ताकि अर्णव को खुद से दूर रख सके। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसके जवाब में माधुरी ने चिंता भरे स्वर में आगे कहा, 3 महीने से ज़्यादा वक्त बीत गया है, अर्णव ध्रुति के साथ है, पर अब तक भी उसे मना नहीं पाया है, और ध्रुति जैसी जिद लिए बैठी है, मुझे नहीं लगता कि अर्णव उसे मना पाएगा। देखती हूँ मैं समझाकर, वैसे वो इस मामले में मेरी भी नहीं सुनती है, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। अब तो उसे अर्णव को माफ़ कर देना चाहिए, जो भी हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए, पर वो कुछ भी भूलने को तैयार नहीं है। मैंने कोशिश की थी बात करने की, तो मुझे कहने लगी कि वो और अर्णव साथ नहीं हो सकते, मैं उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करूं और तुम्हारे पास लौट जाओ, पर मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं कैसे यहाँ उसे अकेला छोड़कर चली जाऊँ। उस दिन के बाद से तो हमारी ठीक से बात भी नहीं होती। हमारे मिलने के लिए ध्रुति और अर्णव का एक होना ज़रूरी है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोशिश तो कर रही हूँ मैं भी, अर्णव भी कोशिश में लगा है, शायद ध्रुति मान जाए। माधुरी अभी आगे भी कुछ बोल रही थी, पर ध्रुति इसके आगे कुछ सुन नहीं सकी। आज दिमाग वैसे ही उलझा हुआ था, उस पर ये जो बातें उसने सुनी, जिसने उसके सोचने समझने की सारी शक्ति खत्म कर दी। पहले अर्णव को किसी गैर लड़की के गले लगे देखना और अब माधुरी की कही बातें, ना चाहते हुए भी नकारात्मकता उस पर हावी होने लगी। मन अलग ही कहानी बुनने लगा था। माधुरी का कबीर से इस तरह बात करना, कुश की जिस हकीकत को उसने अर्णव से छुपाया उसे उजागर करना, इस ओर इशारा करने लगा कि वो भी कबीर और अर्णव के साथ मिली हुई है। धृति उल्टे पैर वापस ऑफिस से निकल गई। अपने ही ख्यालों में होम पैदल ही दार्जिलिंग की सड़कों पर काफी देर तक भटकती रही। दिल में तूफान सा उठ रहा था, मन व्यथित व बेचैन था और सर दर्द से फटने लगा था। उसकी आंखों में सामने कई लम्हे एक साथ घूमने लगे थे। अचानक मृणाल के साथ पार्टी में जाने के लिए माधुरी का दबाव बनाना, वहां अर्णव का मिलना, अर्णव का घर आना, उस रेस्टोरेंट में उसका पहुंचना, माधुरी के सवाल, अर्णव का उसके ऑफिस को खरीदना, अर्णव की कही बातें, माधुरी से हुई बहस, अर्णव का आज किसी और के साथ होना, उसकी मरने की धमकी और यहां माधुरी का कबीर से कहना कि जब तक अर्णव और वो साथ नहीं हो जाते, उन दोनों का भी कुछ नहीं होगा। सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में चलने लगा और धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। शुरू से लेकर सब कड़ियां उसे आपस में उलझी हुई नजर आने लगीं और उसके बाद जिस निष्कर्ष पर वो पहुंची, उसने उसके दिल को पत्थर कर दिया। चेहरे पर सख्त भाव उभर आए, आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हो गईं और एक बार फिर उसने अपने ऑफिस जाने का फैसला कर लिया। उसके चेहरे के सख्त भाव साफ जाहिर कर रहे थे कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। टू बी कंटिन्यूड।